कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
सोचल चिद्र मैं करूं अपने धन के काज, तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहां रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहां से चले गए उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहां भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं गरीबदास। और अब ये है वो स्थान जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती और कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। इतना आनंद रहता है, सब सब आहार उपलब्ध है। गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे ये रख लो वेदो ना भगवान, वो तो घना गंदा लोक है, भगवान वहां तो हाहाकार माच रही है। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम यहां से जब गए तुम बहुत भक्ति युक्त थे, अब तुम भक्ति रहित हो गए। मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको सतनाम कहते हैं, 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ये मंत्र अर्ध सांकेतिक लिखा है। ओम तो सार्वजनिक है, स्पष्ट है, तत् और सत ये 2 मंत्र गुप्त हैं। ये केवल कबीर परमात्मा ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिए थे जिनका मोक्ष हुआ, फिर उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूतों का दाव लग जाएगा और मेरे बच्चे बिनता पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मंत्र के देने वाला पृथ्वी पर एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। या तो परमात्मा आए थे उसमें वो अकेले ही थे, ना कोई ऐसा साधन था, ना कोई मीडिया थी, ना कोई कन्वेंस था, और फिर भी परमात्मा ने 64 लाख शिष्यों को स्वयं ही नाम दिया, दीक्षा दी थी, अन्य को नहीं दी थी। भले ही ये मंत्र नहीं दिया था, ये 5 मंत्र जो आपको 7 मंत्र बनाकर दिए जाते हैं, तो उसमें केवल ये 5 मंत्र ही देते थे दाता, ताकि पता था उनको कि ये अभी मुझे पहचान नहीं सकेंगे, और यदि इनको किसी को मंत्र ये दान कर भी दिया तो ये डिस्क्लोज हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। इस दृष्टिकोण से गरीबदास साहब जी से कहा कि आप ये नाम जाप करना, क्योंकि आप पक्के भक्त हो, आपके अंदर श्रद्धा पूरी होगी, आपने स्थान देख लिया, और उस स्थान को देखने के बाद फिर यहां रुचि स्वप्न में नहीं हो सकती। इस बात से गरीबदास साहब जी संतुष्ट हुए, कि जो आज्ञा प्रभु आपकी है, और कहा यह अभी बताना नहीं। परमात्मा ने अपना सारा ज्ञान उसके अंदर फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी की आत्मा में, जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत बड़ी ये सत्संग की वीडियो तो कोई कोई घंटों की फैक्स कर दी जाती है और उसमें भी सेव रह जाती है। ऐसे परमात्मा ने वो ज्ञान तत्व ज्ञान जो कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी नकली संतों ने, काल के दूतों ने कुछ खराब शराब कर दी थी सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी कबीर वाणी अपने हिसाब से उनके अनर्थ कर डाले थे, उसकी पूर्ति के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंदर वो पुनः ज्ञान फीड किया था और फिर उसको सार्वजनिक करवाया था। अपने आत्माओं गरीबदास साहिब जी की वाणी में परमात्मा ने ऐसा मिश्रण करवा दिया कि न तो गरीबदास के पंथ के समझ सके उसको, और उस मिश्रण के बिना वो वाणी सुरक्षित नहीं रह सके थी। कहीं पर तो गरीबदास जी ने राम और कृष्ण की महिमा सुना दी ताकि ये भोली आत्मा राम और कृष्ण पर आरूढ़ है, इसी आधार से इस वाणी को सुरक्षित रखे। यदि ये एकली कुनीन डाल देते तो कोई नहीं ग्रहण करता। तो जिस कारण से गरीबदास पंथ के पंथियों ने गरीबदास साहिब जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया, उस ज्ञान को ना समझकर उनकी वाणी से अपरिचित जितने भी गरीबदास जी के जो संत बने हुए हैं या उनके पंथी हैं अनुयायी हैं गरीबदास जी कहलाते हैं, एक मेरे पूज्य गुरुदेव जी को छोड़कर उस पूरे गरीबदास पंथ में किसी के पास ये मार्ग नहीं। और ये परमात्मा ने एक सुनियोजित तरीके से यहां तक पहुंचाया। हमारे जो गरीबदास जी के बाद सीधे जो शिष्य बने उनके शीतलदास जी थे, गौ ब्राह्मणा के अंदर उनका आज भी आश्रम है छोटा सा, उनको गरीबदास जी ने विशेष हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र तू जाप कर, केवल एक सुयोग्य शिष्य जिसको मैं संकेत दूंगा उसको बताना। तो गरीबदास जी ने स्वप्न में उनको संकेत दिया और दूसरा उनका जो शिष्य अधिकारी था उसको बताया कि इसको देना और उसको यही बोल देना कि और किसी को नहीं बताएगा। ऐसे ही चलते चलते मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास ये केवल इस गरीबदास पंथ से एक ही कड़ी आई है, ये सत्कर मान लेना। और उन्होंने दास को फिर ये भेद दिया, ये ज्ञान दिया। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के बहुत से शिष्य थे, कुछ साधु भी बने हुए थे, लाल कपड़े रंग कर भी रहते थे, उनको भी आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल इस दास को। दास तो एक सर्विस करता था, ये ही था हरियाणा के अंदर इस नहर महकमे के अंदर। पता नहीं उन्होंने क्या देखा इस दास के अंदर, स्पेशल मुझे कहा था कि ये नाम तू दिया करेगा सत्संग कर, और अकेला मत समझना, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे और विश्व में तेरे समान पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105 वर्ष की थी, और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। तो पुण्यात्माओं ऐसे इस अनमोल ज्ञान को सुरक्षित रखा गया था। तो गरीबदास साहिब जी को कहा था बेटा आप जाइए और प्रचार कीजिए मेरी वाणी का, ऐसे इसको गुप्त रखना, तो स्वयं जाप करना इस मंत्र का। उस कबीर परमात्मा ने भी ये कहा था कि एक सुयोग्य शिष्य तुझे संकेत करूंगा उसी को देना। तो ऐसे संकेत होते होते ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी तक पहुंचा, उससे इस दास को प्राप्त हुआ। और सन 1997 में मार्च के अंदर फाल्गुन सुदी एकम को परमात्मा ने इस दास को कुछ समय के लिए दर्श दिए और कहा कि अब इस सतनाम और सारनाम को कर दे सार्वजनिक, समय आ गया बेटा। अपनात्मा गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने कहा कि आप जाओ बेटा वापस और इस सतनाम का जाप करना, तुम जल्दी ही भक्ति के धनी बन जाओगे, तुम्हारा जितना भी हानि हुई है इससे वो अक्षति पूर्ति हो जाएगी। फिर उसकी महिमा बताई है परमात्मा ने, जो गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से सुने हुए ज्ञान को कैसे बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, चौदह लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक श्वास की कीमत पुणात्माओं कितनी है, एक सतनाम के श्वास उस श्वास से एक कंप्लीट मंत्र की कमाई बन जाती है। जैसे आप एक मंत्र श्वास से बाहर छोड़ते हो दूसरा अंदर लेते हो, ये एक कंप्लीट जाप हो गया सतनाम का। कई भक्त असमंजस में पड़े रहते हैं, ये एक मंत्र समझो कि बस स्टार्ट जिससे किया अंत दूसरे पे हो गया, बस ये एक मंत्र हो गया। इसकी कितनी कीमत है आप तो बालक को आपको पता नहीं, ये वन डिपॉजिट ऑन लग रहा आपका परमात्मा के सच्चे दरबार में। कि एक परमात्मा कबीर साहब ने बताया है गरीबदास साहब जी के माध्यम से ये ज्ञान दिया है कि एक तराजू के एक पलड़े में ताखड़ी के बैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं इस तराजू को, एक पलड़े में कहते हैं सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे वैल्यू, और फिर कहते हैं दूसरे पलड़े में चौदह लोक रख दे। ये चौदह लोक कौन से, ये ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग लोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक और ये और नीचे के पाताल, ये अन्य लोक छह लोक अलग हैं, सात हैं वैसे लेकिन ये पाताल लोक अलग से इन तीन लोकों में गिना जाता है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक महास्वर्ग है, एक धर्मराज का लोक और ये प्रत्येक अलग अलग, ये 88,000 खेड़े हैं। इस तरह के ये 14 लोक हैं, जैसे गोलोक, भूलोक, भूलोक, इस तरह काफी लोक, 14 लोक बनते हैं कुल मिलाकर। तो क्या बताया कि 14 लोक तो एक तरफ और एक श्वास सतनाम की कीमत एक तरफ पालड़े में, और तीन लोक पासंग दर है, ये पूरी पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक जिसको इंद्र का लोक है, इन तीनों लोकों की तो किसमें गिनती ही नहीं है। अब पासंग क्या होती थी पहले, तराजू आया करती, देसी टाइप अब भी है गांव में होंगी मेरे ख्याल में, अभी वैसे भी है लोहे की होगी, पहले लकड़ी की डंडी होती थी, अब लोहे की जंजीरें होगी, पहले रस्सी बंदी होती थी पालड़ों के, तो उसमें हाथ से तोला करते थे, एक डंडी का एक रस्सी बांध रखी होती थी सेंटर में, तो दोनों तरफ तराजू होती थी। तो हमारे घरों पर ये कोई कनक लेने आते थे व्यापारी लोग, गेहूं वगैरह तोलते थे, आकर के मोल लेते थे, तो उसमें उनसे पहले कहा जाता था कि लाला जी तेरी एरर दिखा ताखड़ी में, वो देखता था कोई पलड़ा ऊपर नीचे होता था तो उसमें उसी गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठा करके दूसरी साइड में डालकर उसकी एरर ठीक कर ली जाती थी उस तराजू की, उसको पासंग कहा करते कि इतनी पासंग है इसमें, इतनी एरर है, तो उस पासंग को ठीक करने के लिए एक मुट्ठी गेहूं तो वैसे ही डाल दिए, वो सौदे में नहीं होते, और सौदा तो वो अगद दागद मनवाना 10 क्विंटल तोल ले जा, वो सौदा है। तो परमात्मा कहते हैं के सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, ये तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। के तो भी वो सतनाम का पलड़ा भारी रहेगा, उठे नहीं, और वो 14 लोक वाला ऊपर को उठ जाएगा। अपनात्मा एक श्वास उस श्वास की कितनी कीमत, तो हम कितनी भक्ति लेकर यहां आए थे, हम आजीवन लगे रहेंगे जब जाकर वह पूर्ति होगी। और पुण्यात्मा, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई को यहां वेस्ट घड़ी करते हैं, इस करके जल्दी स्टोर नहीं हो पाती, क्योंकि हम काल में ऐसे उलझा रखे हैं, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं पंचर हुआ रहे हैं, किसी ना किसी कारण से कोई बच्चे को दुखा गया तो उसको अंतरात्मा से काल में ठगवा ही देता है। लेकिन उस समय हमें दृढ़ रखना चाहिए कि बच्चे को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, और फिर आप रखवाला है ये विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा से जो जुड़ गया उसका साथी है, वो उसका बिगड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन हमारा दिल कमजोर हो लिया, इतने कष्ट उठा रखे युगों युगों से, जैसे कुत्ते का कोई लठ मार दे और वो बेचारा इतना पीड़ित हो जाता है, बहुत चिल्लाता है, फिर कहीं भी बैठा हो और जरा सा भी कोई शोर हो जाए ऐसे डंडा टाइप का, वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लग जाता है, जबकि आसपास भी कष्ट नहीं है उसके। तो हम इतने दुखी हो चुके हैं युगों युगों से, हम इतने भयभीत हैं कि ना जाने के बिजली गिरेगी इस बच्चे पर, क्या हो जाएगा भगवान, तो हम डरते रहते हैं। और हम उस डर के कारण अपनी भक्ति को भी उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड कर ही देते हैं। जैसा भी है आप लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा आपका सारी समझ में आ जाएगी, और फिर भगवान उनका रखवाला दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार हम अपनी भक्ति का नाश गणा करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, आपके कोई चरण छुए सिर पर हाथ रख दिया, आपकी गई पूंजी ढेर सारी, क्योंकि जिसके अंदर कुछ है वही तो दे सकेगा। अब पहले ये रिवाज कैसे चलाई थी इस काल में, क्योंकि हमारे दादे पड़दादे और पिछले देखो पूर्ण जन्म के जितने भी हमारे पीढ़ियां या महापुरुष हुए, वो बहुत भक्ति युक्त होते थे, उनके वचन फल जाते थे, और वो क्या करते थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद देते थे, भगवान करत रेनू हो जा, भगवान करत रेनू हो जा, और ऐसे होगा तेरा तू दूसरे पोता हो तुझे पुत्र हो। तो ऐसे वो अपनी पूंजी को नष्ट कर देते थे, अपने टायर से, अपने पहिए से, अपनी ट्यूब से दूसरे मावा भरते रहते थे। अब ना तो उनकी ट्यूब काम की रही, वो आपने भी कंडम कर दी, दोनों खड़े हो गए। उसकी विधि है कि उसकी हवा भरने के लिए अलग से व्यवस्था है, वो वहीं से हवा भरवाई जाए। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अपने आत्मा गरीबदास साहेब जी को ऊपर ये सब दिखाया दाता ने, उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहेब जी के जो साथी पाली थे, उन्होंने कुछ देर के बाद, घंटे दो तीन घंटों के बाद याद आया कि भाई वो गरीबू कहाँ गया। गरीबदास जी को गांव में गरीबू कहा करते थे, शॉर्टकट में चले हैं गांवों में, ऐसे नाम हो ही जाते, गरीब को गरीबू कहा करते थे। और गरीबदास साहेब जी छुडानी गांव के भांजे थे, जन्म उनका वहीं छुडानी में ही हुआ था। उनके नाना जी के कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी के मामा नहीं थे, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहेब जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई रखा हुआ था। तो इस तरह थोड़ी सी बैकग्राउंड से आपको बतानी आवश्यक है। तो वहां ही उनका जन्म हुआ था। तो पालियों ने देखा रहे वो लड़की का लड़का कहां है, वो अपनी गऊओं के पास क्यों नहीं खड़ा है। काफी दो तीन घंटों के बाद उनका ध्यान आया, मालिक की मेहर थी। उनमें से एक आया कि देखो बाबा जी चला गया होगा। उसने आकर देखा गरीबदास जी के शरीर ऐसे बैठा है, दूर से आवाज लगाई, गरीबू उठ ले भाई, गाय घेरने की बारी आ गई, तेरी खड़ा हो। अब निकट आकर उसने कहा भगत जी खड़ा हो ले, समाधि लगा कर बैठ गया। निकट आकर उसको पकड़ के ला, अरे खड़ा हो भगत। अब वो गिर गए से, उसमें था नहीं आत्मा। अब एकदम वो बच्चे अचंभित हुए, वो बड़े बड़े पाली ग्वाले वो आगे शोर मचाया, हाय मर गया मर गया, जादू जंतर का दूध पी लिया, बाबा जी ने जंतर मंत्र कर दिया है, अभी तो लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, उसमें दूसरा पुत्र था नहीं, अपने आत्मा भगदड़ मच गई, दो तीन ग्वाले भाग कर आए गांव में, डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर खेतों से गांव था छुड़ानी, तो वहां पता लगते ही सारे गांव के अंदर हाहाकार मच गई, छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे, और माता पिता इस दुख को सहन नहीं कर सके, वो अचेत हो गए। 12 वर्ष वहां रहने के बाद संतान प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये सुनकर वो एकदम अचेत हो गए। अब भाग लिए सभी नंगे पैरों, जहां वो खेतों में बताया था वहां ऐसा हुआ, सब कहानी बता दी गई। अब वहां जाकर के देखा बच्चा सचमुच मरा हुआ है, उनको उठाया गांव में लाए, फिर अपने जो कुल के लोग इकट्ठे हुए, उसको उठाकर शमशान घाट पर चिता पर रख दिया, अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी। अग्नि लगाने वाले ही थे तभी परमात्मा ने उस आत्मा को बॉडी में भेज दिया, शरीर में वापस कर दिया। एकदम खड़े हुए गरीबदास जी, कंपन लग गया सारा शरीर, ऐसे ऐसे हिलकर एकदम खड़े हुए, और उठकर फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके हृदय में फीड की थी उसी ज्ञान को बोल रहे हैं, अन्य कुछ भी बात नहीं बोलते। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, आन माने आके, अजब नगर में ले गए, सतलोक में लेकर गए, और जल के बिंब अगाध गति वो देखी रोशनी न्यारी, हम सूते चादर ताण, यानी वहां निश्चिंत हो गए, कोई दुख कष्ट वहां नहीं रहा, अब हमें दृढ़ विश्वास हो गया। अब ये वाणी बोलने लगे, धर्म राय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्म राज कर जोड़े, तुमरे हंस न चंपूंगा मन 2,00,000,000,000। कर्म ब्रह्म ब्रह्मांड के मैं पल में करूं नेस, जिन हमारी दो ही देई सो करो हमारे पेश। अब ये वाणी बोलने लगे, गांव वाले समझ नहीं सके, उन्होंने तो ये आइडिया लगा लिया कि लड़का पागल हो गया, बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुमारी गाय का दूध ओहो पाप का था, घर वालों ने यह सोचा कोई बात नहीं, बच्चा जीवित हो गया, जैसा भी बांगा बोला है भोला भाला, जैसा पागल मेंटल पड़ा रहेगा, बेटी अपना इसको देखकर जीवित रह जाएगी ना, ये भी बड़े रो रो के ये सोचकर संतोष कर लिया कि पागल तो हो गया तो कोई बात नहीं, अब लड़की इसके सहारे अपना टाइम पास कर लेगी, ऐसा सोचकर संतुष्टि की। 3 वर्ष हो गए गरीबदास साहिब जी ना किसी से विशेष बोलते हैं, ना काम को कहते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं, और ये वाणी बोलते रहते हैं, अकेले खड़े होकर बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख रहा क्या सतलोक, अब कैसे मन लगे इस गंदे लोक में, पर आदेश भगवान का हो गया। ऐसे 3 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष की आयु गरीबदास साहिब जी की हो गई। एक दिन एक दादू पंथी महात्मा जो एक बनिया जाति से था, वैसे कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहां से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी थी, और घर त्याग के वो विराग में ही रहता था। अपने आत्मा उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहां क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए, तो आदरणीय दादू साहेब जी की भी थोड़ी सी यहां वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहेब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, और भी कई बच्चे बैठे थे। कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से पानी लिया मुख में और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का थे, थोड़े थोड़े होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया और कहा बेटा नाम ले तू दादू और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, नौकर के पी गए फट दे ही। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख पर सूरा दूध ही लख पर सामत दे, लख पर यती जहान में तो सतगुरु शरण आले, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए, इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, इसकी जाति का पता नहीं ऐसा, वो तो गांव में भाग गए। और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के जैसे गरीबदास साहेब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहेब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठे को छोड़कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका झूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहेब जी चेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए। और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजो में शरीर युक्त सतलोक में सिंहासन पर विराजमान थे, नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजो में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ गए, उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चौर वो तेजो में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखे था जो तेजो में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजो में शरीर परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बन कर रहा था, ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहां भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहां दिया। और गरीबदास जी को तो यहां तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहेब जी तो गरीबदास जी जो पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहेब जी को सब परिचय देकर के वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई, और दादू साहिब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो दादू साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है वो सुनाते आपको थोड़ी सी। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ताक हूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते हैं उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुणगान उस परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है। कहते ही जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहां दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंज नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूध दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, के दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में। यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यू हम लेने भी ना गए मरेंगे, हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है कौन है। तो उसमें दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया, उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए। बेटा की तरह गया था तो पीछे वो नजारे देखन लग गया, तो एकदम भागे यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर का पड़ते ना, इतनी दूर तक स्पीड तो भागे गणे थे। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा, तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब, सब पाप माफ कर दिए मुझ दास के, दादू साहब जी कह रहे हैं। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, ब्रंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी के मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले मुझको। और कहते हैं हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना। सेवक देव निज चरण का, हे देव हे भगवान हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, और इसको अपना जान मेरे दाता। और ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक बिरंगी कीट होता है, भी भी करता, वो मीरी बोलने, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही सती थी आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी बिरंगी बन गए। ना जाने सब ने बता दिया, किस किस ने सुना दिया, और बिरंगी से फिर और भी बिरंगी बन गए। आप भी से भी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सता चंचन सुमरण ध्यान, वारु नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा, साख यानी महिमा उसकी, तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं, काल भी कहते मुरझा जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समर सकती है। और धन धन तीनों लोग में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू वजन पर तापते ये भाग सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने, कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है, हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं, जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने ये भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नाशवान। सर्वपुरुष ये स्वयं है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। ये लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहां 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं बस, लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो यहां कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे सथूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि काल को तो समझ लो गजराज हाथियों का राजा, यानी हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का ये सतनाम, और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज एक निकट आ लिया, हाथी लीड कर देता है और भाग लेता है छोड़कर उस स्थान को, दूर भागने की चेष्टा करता है। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं, 1000 भुजा का मालिक है ये, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16-16 कला के और 4-4 भुजा के, लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा असंख्य कला का असंख्य शक्ति का मालिक है उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज दादू बदन प्रताप ते भागे सुनत आवाज पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए आथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को कि जैसे आथी, अब आथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया वो तो समझो इस काल की रेंज से रीत से पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भगत परमात्मा का और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। काल की रेंज से काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठे हो तो भौं की रहा है आते पाड़ू खाऊं इसको। ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चित लाए अस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है उसका जाप करने से कटे काल की पीड़ ये काल जो आपको दुख दे रहा है पाप कर्मों से ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा करते हैं कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेश यानी क्रोश मार दून पे सब पे अर्जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई ले वे ओटे तिन को कबूला गए नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को और ये इतने गवाह भगवान के कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा उसकी शरण में आ जाएगा उनको कबूल आ गए नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में जब तक आपका नाम ठीक है कनेक्शन जुड़ा है तो आपको शरण है आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की कवच आपके ऊपर काल का कोई अटैक नहीं लगेगा कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश हो जाते हैं ये कभी नहीं हो सकता इस वाले की शरण आने वाले को लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई ले वे ओटे तिन को कबू लाग नहीं ये काल वज्र की चोटे। काल का वज्र ये परमाणु भी मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते दरिता नीर दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते और संत सब कूप हैं जैसे छोटे मोटे संत हैं कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो ये तो ऐसे सुन लो कोई तो कुएं का जल है कोई जरीता नीर कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। परमात्मा को तो दरिया जानो और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं वहां से मुझे ये लाभ हो गया वहां से ये लाभ हो गया कहते और संत सब कूप हैं कुएं हैं वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं सिंचाई में काम नहीं दे सकते फिर पानी पानी से काम चले खेती भी करनी पड़ेगी उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर झरने से है छोटे मोटे काम चला रहे हैं और दादु अगम अपार है यह दरिया सतकबीर, यानी यहां भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहां का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटाये जन्म मरण की पीर, सुहास उस सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे डंडट मिट जाएंगे इस श्वास को श्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का वाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का अर सुनते का पैकाल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोकु निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजन हारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिन वो को निज नाम दिया, निज असली मंत्र जो सतनाम जो मुझे दिया मेरा वो ही सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपनात्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा महाराज जी हमारे लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाते मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के मौत जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी ने पूछा, गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था। अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया उनका सीमा कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा था लय वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया, किस किस को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले थे। तो यहां कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विष बताया आपके लिए जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ, अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के अगाध गति हम सूते चादर तान, अलल पंखन राग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है, मेरा तो जैसे अलल पक्षी का अपने माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहां ध्यान रहता है, और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है सतलोक में सचखंड में रहता है, आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे गांव वालों ये बावला को ना बावले तो तुम हो गए, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास बीच में छोड़ कर ना भागना, अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूं गांव से घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूंगा। उनके गरीबदास साहेब जी का अपना ही एक जंडी का पेड़ था, एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा 6 महीने तक लिखते रहे। गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था, वो अमृत वाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का पुनर् स्वच्छ रूप गरीबदास साहब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुनकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। इस परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में अर्थात इस प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है, उसके लिए सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्मा परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़री खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा रोगिया रे भाई साचा सतगुरु कोए ना पूजे इन झूठो जग पतियासी सच्चा सतगुरु को ये न पूजे इन झूठों जगपतियासी अंधे की वागही अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गेस गेस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी गेस गेस अंग लगावे कहें कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे सार शब्द सर जीवन बूटी गेस गेस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी गेस गेस अंग लगावे कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से ग्रस्त है? ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा। हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत कुछ विवरण, जैसा कि हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे।